ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 5 श्लोक संख्या 14। इस अध्याय का शीर्षक है प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। नाना रूपात्मनो बुद्धि स्वैरिणिवास गुणान्विता अनिष्ठाम् अगतस्येह किमा असत्कर्म भिर्भवेत्। नानारूपात्मनो बुद्धि स्वैरेणैव गुणान्विता तन्निष्ठाम् अगतस्येह किम असत्कर्म भिर्भवेत्। नानारूपात्मनो बुद्धि स्वैरेणैव गुणान्विता तन्निष्ठामगस्येह 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 किम असत्कर्म भिर्भवेत्। नानारूपात्मनो बुद्धि गुणान्विता तन्निष्ठामगस्येह किम असत्कर्म भिर्भवेत्। नानारूपात्मनो बुद्धि स्वरिणी व गुणान्विता तन्निष्ठा मगस्येह किमसत् कर्म भिदे। माताजी, नानारूपात्मनो बुद्धि स्वरिणी व गुणान्विता तन्निष्ठा मगस्येह किमसत् कर्म भिर्भवेत्। शब्दार्थ, नाना विविध रूपा रूप यावेश वाले, आत्मना जीव की, बुद्धि बुद्धि, स्वैरिणी वेश्या जो स्वतंत्र होकर नाना प्रकार के वस्त्रों तथा गहनों से अपने को सजाती है। इव सदृश गुणान्विता रजोगुण इत्यादि से समन्वित, तत्तन्निष्ठां उसका अंत, अगतस्य जिसने नहीं प्राप्त किया है उसका, इह इस भौतिक जगत में, किम असत् कर्म भीर भवेत् नश्वर सकाम कम करने से क्या लाभ। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद, नारद मुनि ने एक स्त्री का वर्णन किया था जो पेशेवर वेश्या है। हरियशों को इस स्त्री की पहचान समझ में आ गई। रजोगुण से मिश्रित हुई प्रत्येक जीव की अस्थिर बुद्धि उस वेश्या के समान है जो किसी के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए अपने वस्त्र बदलती रहती है। यदि कोई मनुष्य यह जाने बिना कि यह किस तरह हो रहा है पूरी तरह क्षणभंगुर सकाम कर्मों में लगा रहता है तो उसे वास्तव में क्या मिलता है। आवृत्ति करेंगे। नारद मुनि ने एक स्त्री का वर्णन किया था जो पेशेवर में वेश्या है। हरियशों को इस स्त्री की पहचान समझ में आ गई। रजोगुण से मिश्रित हुई प्रत्येक जीव की अस्थिर बुद्धि उस वेश्या के समान है जो किसी के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए अपने वस्त्र बदलती रहती है। यदि कोई मनुष्य यह जाने बिना कि यह किस तरह हो रहा है पूरी तरह क्षणभंगुर सकाम कर्मों में लगा रहता है तो उसे वास्तव में क्या मिलता है। तात्पर्य, जिस स्त्री के पति नहीं होते वह अपने को स्वतंत्र घोषित कर देती है, जिसका अर्थ है कि वह वेश्या बन जाती है। वेश्या सामान्यतया अपने शरीर के अधो भाग के प्रति मनुष्य का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से नाना प्रकार के वस्त्र धारण करती है। आजकल स्त्री के लिए नग्न प्राय घूमने, अपने शरीर के अधो भाग को किंचित ही ढकने की अत्यधिक विज्ञापित फैशन इसलिए चल पड़ा है, जिसे मनुष्य का ध्यान अन्न सुख के लिए उसके गुप्त अंगों की ओर खींचे। अपने शरीर के अधो भाग की ओर मनुष्य को आकृष्ट करने में लगाई जाने वाली बुद्धि एक पेशेवर बुद्धि होती है। इसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण के या कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रति अपना ध्यान नहीं मोड़ता उस जीव की बुद्धि वेश्या की ही तरह केवल वस्त्र बदलती है। ऐसी मूर्खतापूर्ण बुद्धि से क्या लाभ। मनुष्य को बुद्धिपूर्वक इस तरह से सचेत होना चाहिए, उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलाव न करना पड़े इससे बचना चाहिए। कर्मी जन किसी भी क्षण अपने पेशे बदल देते हैं किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना पेशा नहीं बदलता। कि उसका एकमात्र पेशा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा कृष्ण का ध्यान आकृष्ट करना तथा नित्य फैशन न बदलकर अत्यंत सादा जीवन बिताना है। हमारे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में फैशन प्रस्त लोगों को एक ही फैशन सिर मुड़ाए तथा तिलक धारण किए वैष्णव वेश अपनाने की शिक्षा दी जाती है। उन्हें मन वस्त्र तथा भोजन में सदैव स्वच्छ रहने की शिक्षा दी जाती है जिससे वे कृष्ण भावना अमृत में स्थिर हो सकें। अपने वस्त्र को बदलते रहने से कभी लंबे बाल तथा कभी लंबी दाढ़ी रखने से तो कभी अन्य प्रकार से वेश धारण करने से क्या लाभ, यह अच्छी बात नहीं है। मनुष्य को ऐसे शूद्र कार्यों में समय नहीं गंवाना चाहिए, उसे सदैव कृष्ण भावना अमृत में स्थिर रहना चाहिए तथा दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति रूप औषधि का सेवन करना चाहिए। इस श्लोक की अध्याय में नारद मुनि हरियशों को रूपक के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे पीछे का श्लोक में उन्होंने कहा कि एक ऐसा राज्य है जहां एक ही राजा है, और एक ऐसा बिल है जिसमें जाने का रास्ता है लेकिन वापस आने का रास्ता नहीं है, वन वे है। कौन सा जगह है? और एक ऐसी स्त्री है जो प्रति क्षण अपना बुद्धि अपना ड्रेस बदलती है। तो यहां रूपक मतलब मुहावरा नहीं, पहेली के माध्यम से कह रहे हैं। पहेली के द्वारा जो चीज कहा जाता है या इनडायरेक्ट में अप्रत्यक्ष रूप में तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। कोई भी बात को डायरेक्ट कहिए और उसको इनडायरेक्ट में कहिए तो इनडायरेक्ट में कहने से उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो नारद जी कहे कि एक ऐसा राज्य है जहां एक पुरुष है, भगवान है। एक ऐसा रास्ता है जहां जाने का रास्ता है, वो भगवान के धाम में जाने के बाद यद गत्वा न निवर्तनते, जो भगवान के धाम में जाता है भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है, वो भौतिक शरीर फिर नहीं प्राप्त करता है। एक ऐसी स्त्री है जो बहु रूपा है, वो बुद्धि है। मनुष्य की जो असत बुद्धि है जो रजोगुण से मिश्रित होकर के सकाम कर्मों में लगी हुई है उस बुद्धि को वेश्या कहा गया है। कोई भी चीज हम लोग बचपन में पहेली बुझाते थे जिसको बुझौल बोलते हैं। जैसे हम लोग बचपन में बोलते थे कि जो भी हो तुकबंदी में लोग कहते थे पत्थर पर पत्थर सिपरसन पर पैसा आ बिना पानी के घर बनाए वो मर्द कैसा। मैंने उसको न कोई सामान है न कारीगरी का कोई सामान है न सीमेंट है न बालू है न ईंट है न पानी है, यूं घर बना देता है वो मर्द कैसा है, ये बुझौल हम लोग बुझाते थे। तो फिर और भी बोलते थे कि जो न बुझे उसका बोलते जो नहीं बुझे उसका बाप बंद उसका पिता बंदर ऐसा बोलते थे। अगर बुझौल बुझाकर उसमें एक कंडीशन डाल देते थे, अरे बुझौल जो नहीं बुझेगा वो बंदर का बेटा ऐसे बोलते थे। ते बुझौल के माध्यम से रूपक के माध्यम से नारद जी भी हरियशों को समझा रहे हैं। बहुत से बुझौल बचपन में हम लोग बोलते कि बचपन में दो सिंह जवानी में नहीं, अब बुढ़ापा में दो सिंह गाय बैल नहीं। बचपन में दो सिंह है, जैसे गाय को सिंह होता है बैल को होता है भैंस को, बचपन में दो सिंह है लेकिन जवानी अवस्था में वो सिंह नहीं है। बचपन में है तो जवानी में भी होना चाहिए, बल्कि बचपन में नहीं होता है जवानी में होता है। कोई गाय का बच्चा होता है तो उसको सिंह नहीं होता है प्रारंभ में, जवानी में होता है। इस पहेली में कहा कि बचपन में दो सिंह जवानी में नहीं, युवावस्था में उसको सिंह नहीं है, अब बुढ़ापा में दो सिंह कि गाय भैंस नहीं। बुढ़ापा में फिर दो सिंह हो जाते लेकिन गाय भैंस नहीं है, क्या है? बचपन में दो सिंह जवानी में नहीं, अब बुढ़ापा में दो सिंह गाय भैंस नहीं। तो बुझने वाले बुझ रहे कि भाई है क्या, वास्तव में क्या है, स्प्रिया होती है। और जानने की स्प्रिया और बढ़ जाती कि है क्या। तो हम लोग बचपन में कहते देखो चांद जो है प्रारंभ में सिंह जैसा होता है, चंद्रमा द्वितीय का चंद्रमा कैसे होता है ऐसे सिंह जैसा होता है, और जब जुआ होता है तो पूरा गोल हो जाता है, सिंह खत्म हो जाता है, और फिर जब चंद्रमा ह्रास होने लगता है तो फिर दो सिंह जैसा हो जाता है। बचपन में भी दो सिंह जैसा होता है, जुआ अवस्था में पूर्ण गोलाकार हो जाता है, अब वृद्धा अवस्था में फिर दो सिंह हो जाता है। तो रूपक के माध्यम से जैसे बिना पानी का घर बनाए, कौन घर बनाता है, तो दीमक। दीमक जो है बिना पानी का घर बनाता है, दीमक जो है बड़ा बड़ा घर बना देता है, इसमें गुफा जैसा केव्स जैसा हो जाता है। महात्मा लोग पहले जंगल में भजन करते थे तो उनके शरीर पर दीमक का घर हो जाता था, बिना कोई हथियार के वो घर बना देता है, बिना कोई सामान के, बिना कोई औजार के। उसी तरह मकड़ी जो है बिना काटा बुनने वाली मशीन के धागा बना देती है मकड़ी। अब लोग मकड़ी देखे होंगे जो घर में जालीदार से वस्त्र बना देती है, बिना बुनाई के, बिना धागा कताई के, उसके मुख में ऐसा सिलाई मशीन भी है, धागा भी है अब बुनने की भी कारीगरी है, मुंह से ही वो धागा बुन देती है, पूरा उसी में घूमते रहती है, अपने द्वारा अपने लार ग्रंथि से वो बुन देती है। एक दर्जी पक्षी होती है, आप देखे होंगे दर्जी पक्षी, टेलर बर्ड, जो अपना घोंसला बनाती है पूरा पतले पतले रेशों को ला करके, जैसे हम लोग टोपी पहनते हैं गर्म टोपी या सॉक्स पहनते हैं, वैसा वो अपना घोंसला बना देती है। तो नारद जी यहां करें कि हरियाणों को करें कि एक स्त्री है जिसका कोई पति नहीं है, स्त्री को पति होना चाहिए लेकिन इस स्त्री के पास कोई पति नहीं है, और वह स्वतंत्र घूमती है, और पेशेवर में वो वेश्या है, वेश्या के कई पति होते हैं, वेश्या के एक पत्नी होते हैं। तो जिसकी बुद्धि अस्थिर है, जो भगवान में नहीं लगी है, मतिर न कृष्ण, जिसकी मति कृष्ण में नहीं है, संसार के सकाम कर्मों में है, तो उसको असती बुद्धि कहा गया है। वह बुद्धि जो है पुंसली बुद्धि है, और वह बुद्धि के द्वारा जीव जो है सकाम कर्मों में लगा रहता है और हमेशा शरीर बदलता है। वस्त्र बदलना मतलब शरीर बदलना। व्यक्ति बुद्धि के द्वारा सकाम कर्म करता है असत बुद्धि से, और उन सकाम कर्मों के द्वारा शरीर मिलता है। ये शरीर मिला है इसके पीछे हमारे सकाम कर्म हैं, और सकाम कर्म के द्वारा बार बार वो शरीर बदलता है। शरीर बदलना मतलब वस्त्र बदलना है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो पुंसली स्त्री होती है हमेशा वस्त्र बदलती है पुरुष को आकृष्ट करने के लिए। प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि आजकल प्रायः नग्न स्त्रियां घूमती हैं, यह एक फैशन हो गया है नग्न रहने का। आजकल स्त्री के लिए नग्न प्राय घूमने की प्रथा चल पड़ी है। शरीर के अधो भाग को किंचित ही ढकने की अत्यधिक विज्ञापित फैशन चल पड़ा है। आजकल जैसे अखाड़े में पहलवान लोग नंगोटा पहनते हैं एक बार महाराज बता रहे थे, राधा गोविंद महाराज की विदेश में गए थे अमेरिका में, तो एक भक्त कहे कि महाराज चलिए बीच में हम लोग देख घूम कर आते हैं, तो बीच में अमेरिका के बीच में घूमने के लिए गए, तो वहां देखे कि स्त्री पुरुष सब जैसे ब्रह्मचारी लोग कौपिन पहनते हैं वैसे कौपिन पहनकर सब लोग रेती पर घूम रहे हैं। तो महाराज कहे कि अब चलिए यहां से तो प्राय भारत में अभी भी इस तरह स्थिति नहीं, लेकिन विदेशों में प्राय अब लोग कौपिन भी नहीं पहनते हैं। विदेशों में तो संपूर्ण रूप से नग्न घूमते हैं लोग। प्रभुपाद जी आज से लगभग कई 40-50 साल पहले लिखे हैं भागवत में। प्रभुपाद जी की दिव्य दृष्टि थी कि कली युग में लोग नग्न घूमेंगे, या नग्न रहने की प्रथा जो है प्राय असुरों में रहती है, भूत प्रेत नग्न घूमते हैं। मनुष्य समाज में नग्न घूमने की प्रथा नहीं है, लेकिन भूत प्रेत जो है नग्न घूमते हैं, या उनका बाल भी विकराल होता है, नाखून भी होता है। जैसे उपनखा के पास सूप जैसा नख था, सूप नखा, जिसका नख जो है सूप जैसा हो उसको सूप नखा बोलते हैं। अपने शरीर के अधो भाग की ओर मनुष्य को आकृष्ट करने में लगाई जाने वाली बुद्धि एक पेशेवर बुद्धि होती है। इसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण या कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रति अपना ध्यान नहीं मोड़ता, उस जीव की बुद्धि वेश्या की तरह ही केवल वस्त्र बदलती है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में प्यार आया है कि कौन बुद्धि है या कौन विद्या श्रेष्ठ है, कौन विद्या, विद्या मध्य कौन विद्या श्रेष्ठ। से संसार में लोगों को बड़ा बड़ा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वैज्ञानिकों को, या कोई बहुत अच्छा फिल्म बनाता है तो उसको भी कौन सा पुरस्कार देते हैं, आए फिल्म फेयर में जो फिल्म हिट होता है सुपर हिट, तो उसको फिल्म फेयर पुरस्कार दिया जाता है। वो फिल्म भले कैसा भी हो, प्रभुपाद जी लिखते हैं आजकल जितने मूर्ख लोग हैं सब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हैं। जैसे डार्विन का प्रभुपाद जी ये करते हैं कि डार्विन जो है लोगों को केवल बुद्धू बनाया है, उल्लू बनाया है। डार्विन ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है कि हमारे जो पूर्वज थे बंदर हैं। और लोग मान भी लेते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यह एक गाली है, किसी को कहे कि तुम्हारे पिताजी बंदर हैं तो लोग भड़क जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन वो गाली दिया है, लेकिन फिर भी लोग उसको नोबेल पुरस्कार देते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जितने बड़े बड़े मूर्ख लोग हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हैं। लेकिन वास्तविक बुद्धि क्या है, कौन विद्या, विद्या मध्य कौन विद्या श्रेष्ठ। राय रामानंद से पूछते हैं चेतन महाप्रभु, राय रामानंद से ना, तो राय रामानंद कहते हैं कृष्ण भक्ति विद्या बिना, जिस विद्या में जिस बुद्धि में कृष्ण भक्ति नहीं है वह विद्या नहीं, वह विद्या है। कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। कृष्ण भक्ति से जो रहित विद्या है वो जीव को बार बार बाध्य करती है सकाम कर्मों में लाने के लिए, और सकाम कर्मों से उसके नए शरीर के निर्माण होते हैं। हम सकाम कर्म करते हैं तो फिर अगला हमें भौतिक जीवन मिलता है। सकाम कर्म मतलब केवल इंद्रिय तृप्ति पर जो आधारित है। ऐसी मूर्खतापूर्ण बुद्धि से क्या लाभ है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसी मूर्खतापूर्ण बुद्धि से क्या लाभ है। मनुष्य को बुद्धिपूर्वक इस तरह से सचेत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए कि उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलाव न करना पड़े, माने हमें बार बार शरीर न लेना पड़े। ये परिवर्तन के बाद फिर हमें दूसरा परिवर्तन में न जाना पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खल दुस्ताय के कृपया पाही पाही मुरारे से। तो ये जो शरीर परिवर्तन हो रहा है एक शरीर से दूसरे शरीर में, कभी हम निम्न जोनियों में जाते हैं, कभी देवता का शरीर प्राप्त करते हैं, कभी हम ब्राह्मण का शरीर प्राप्त करते हैं, कभी शुकर कुकर जोनी में जाते हैं, तो यह जो परिवर्तन है यह बहुत दुखद है। और खास करके प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य समाज के लिए यह परिवर्तन बहुत दयनीय है, इस परिवर्तन से हमें बचना चाहिए। मतलब इसी जीवन में हमें भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए कि पुनः ऐसी स्थिति न हो कि फिर पुनः 84 लाख जोनियों में जाना पड़े। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कर्मी जो केवल दैहिक सुखों में लगे हैं, जिन्हें कृष्ण भावना भावित क्रियाओं में रुचि नहीं है, वे अपनी वृत्ति बदलते रहते हैं, लेकिन जो हरे कृष्ण के भक्त होते हैं केवल हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण में लगे रहते हैं, कीर्तन द्वारा कृष्ण का ध्यान आकृष्ट करते हैं और सादा जीवन यापन करते हैं। वो फैशन प्रस्त लोग जो हमेशा फैशन बदलते हैं, कभी कभी लोग दिन में कई बार वस्त्र बदलते हैं, ये कहीं आदमी कई वस्त्र बदलता है और कई बार अपना हेयर ड्रेसिंग कराता है, आप पहचान नहीं पाएंगे। जैसे फिल्म में जो लोग शूटिंग करते हैं, लोग अपने बाल को एक्शन के अनुसार अलग अलग तरह से उसको डिजाइन देते हैं मशीन के द्वारा, देते हैं ना, इनको अनुभव है प्रभु जी को। एक आदमी को आप मंच में देखेंगे कि उसका बाल घुंघराला है, दूसरे एक्शन में उसका बाल लंबा लंबा हो जाता है। तीसरा एक्शन करना है तो वही व्यक्ति का बाल आप देखेंगे कि भेड़ कटिंग का बाल हो गया है। भेड़ कटिंग जानते हैं, आजकल एक भेड़ कट चला है, जैसे भेड़ का बाल काटा जाता है उसको ऐसे लाइन से बीच में बाल होता है, उसको भेड़ कट कहते हैं। तो वो भेड़ कट में जो है बीच बीच में बाल रहता है, गैप रहता है, लाइन लाइन रहता है। और एक होता है घोड़ा कट बाल। एक व्यक्ति जो है, मैं कहा कि शिखा सब लोग यहां रखते हैं, आप यहां क्यों रखे हैं? वो यहां शिखा रखा था, तो बोला कि आज हमारा शूटिंग है इसलिए हम यहां रखे। तो यहां शिखा रखा था। तो ये डिजाइन जो है, आदमी दिन में कई बार डिजाइन बदलता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आजकल जो फैशन प्रस्त लोग हैं, अपना ज्यादा समय जो है फैशन बदलने में लगा देते हैं। लोग साथ में ब्यूटी पार्लर लेकर घूमते हैं और निकाल करके तुरंत लगा लेते हैं होठ में, इधर उधर, फिर बाल लेकर जहां समय मिलता है बाल लेकर उसको एक करना। ज्यादा समय जो है इसी में बीतता है, लोगों को अपना ड्रेसिंग करने में, अपना श्रृंगार करने में, बाल को सजाने में ज्यादा समय चला जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि बाल मुड़ा लेने से समय बच जाता है। बाल मुड़ा लिए तो जल्दी साफ हो जाता है, गंदा भी नहीं होता है, उसको ज्यादा संवारने के लिए समय भी नहीं लगता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि फैशन प्रस्त लोगों को इस्कॉन में आने पर उनको एक ही फैशन सिखाया जाता है कि सिर मुड़ा लीजिए और तिलक लगा लीजिए, अपने वेश में वैष्णव वेश में रहने की शिक्षा दी जाती है। उन्हें मन, वस्त्र तथा भोजन में सदैव स्वच्छ रहने की शिक्षा दी जाती है। मन से, वस्त्र से, भोजन से स्वच्छ रहने की शिक्षा दी जाती है। भोजन में सदैव स्वच्छ रहने की शिक्षा इसलिए दी जाती है, व्यक्ति जैसा भोजन करता है, जैसा अन्न खाता है, वैसा मन बनता है। जैसा अन्न वैसा मन। कभी कभी लोग खाने के लिए होटल में जाते हैं या स्नैक बार में जाते हैं या फुटपाथ पर खाने के लिए लोग जाते हैं। हम लोग देखते हैं होटलों में जहां भोजन बनता है, अब उसके रसोई घर में जाएंगे तो बहुत गंदा होता है, लेकिन डाइनिंग रूम में, जो डाइनिंग रूम बोलते हैं ना, खाने का टेबल, डाइनिंग रूम बहुत सुंदर होता है। इतना सुंदर होता है, लेकिन ठीक उसके विपरीत जो यहां कुकिंग होता है बहुत गंदा होता है। और ये कहीं पानी में सारा बर्तन धोया जाता है, बंबई में पानी का अभाव होता है, प्राय आप जूस सेंटर में जाएंगे जहां जूस मिलता है, एक बाल्टी पानी में 100 गिलास धो देता है और कपड़ा से पोछ करके आपको दे देता है। और वो अंडरग्राउंड में बाल्टी रहता है, नीचे कपड़ा से ढका होता है, पीछे होता है, उसी में धो करके लोग बहुत आनंद से पीते हैं, बहुत सुंदर है। सफाई पर लोग विचार नहीं करते हैं कि कितना वो क्लीन है, केवल स्वाद के पीछे लोग भागते हैं। टेस्ट और हेल्थ, टेस्ट का और हेल्थ का बड़ा संबंध है। अगर आप टेस्ट लेंगे ज्यादा जिह्वा के को तृप्त करने के पीछे भागेंगे तो हेल्थ जो है खराब हो जाता है। अगर हेल्थ को बरकरार रखना है तो टेस्ट को जो है छोड़ देना चाहिए। जिह्वा रे लालच बस इतुत धाय आशिष्ण उदर परायण कृष्ण ही पे। जिह्वा के बस में हो करके लोग अनेक चीज खाते हैं और खाने के बाद जो है बीमार हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए चना को गीला कर देता है या मूंग को गीला कर देता है, अंकुरित कर लेता है, उसको खाता है। अब कोई व्यक्ति उसी चना को दलमोट बनाकर खाता है, उसको खूब फ्राई कर देता है, चटपटा नमक मिर्ची मिला देता है और खाता है, तो जिह्वा के लिए खाता है। और जो व्यक्ति अंकुरित करके खाता है वो स्वास्थ्य के लिए खाता है, स्वस्थ रहने के लिए। तो स्वस्थ रहना है, एक महात्मा थे हम लोगों की तरफ गीता घाट के बाबा, बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे उधर हमारे क्षेत्र में, तो एक बार प्रवचन में बता रहे थे कि अगर स्वस्थ रहना है तो स्वाद को छोड़ दो, स्वाद के पीछे मत जाओ। अगर स्वाद के पीछे जाना है, आपको केवल स्वाद लेना है, ये खाऊं इसका स्वाद क्या है, इसका स्वाद क्या है, तो स्वाद के पीछे जाएंगे तो स्वस्थ रहना भूल जाइए, आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। मनुष्य समाज में सबसे ज्यादा खाने की सुविधा है, आप मिष्ठान के भंडार में जाइए, हजारों प्रकार के मिष्ठान हैं। आचार लेने जाइए तो कोई आचार का जो भंडार है उसमें नाना प्रकार के आचार हैं। ड्राई फ्रूट्स के दुकान में जाइए तो अनेक प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हैं। फल के दुकान में जाइए तो अनेक प्रकार के फल हैं। पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ अनेक प्रकार के हैं, थम्सअप है, कोको कोला है और बहुत सारे हैं। मनुष्य को सबसे ज्यादा खाने की सुविधा है। और सबसे ज्यादा बीमार कौन होता है? मनुष्य बीमार होता है। सबसे ज्यादा हॉस्पिटल किसके लिए है? मनुष्य के लिए। अब पशुओं के लिए भी हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, लेकिन गाय बैल को डायबिटीज कहां होता है, या गाय बैल को कहां चश्मा पहनाया जाता है? आपके घर में बैल है गाय, उसको आप लोटस साइज हॉस्पिटल जैसे वहां कहां कोई ले जाता है? गाय को बैल को चश्मा कभी जरूरत नहीं पड़ता है। और वो क्या खाते हैं? केवल घास खाते हैं, घास भूसा खा करके न उन पर डायबिटीज होता है, नाक में चश्मा आता है, न उनका दांत गिरता है, उनका दांत भी रहता है। और सबसे ज्यादा स्वाद आदमी लेता है, सबसे ज्यादा खाने की सुविधा एकत्र करता है तो उसका दांत भी पहले चला जाता है, आंख का रोशनी भी चला जाता है। जो नेचर में प्रकृति में जो चीज है वही पशु खाते हैं। गाय केवल घास खाकर स्वस्थ रहती है। गाय को आप कभी देखें कि नमक थोड़ा घास में दिया गया है या थोड़ा सब्जी मिलाकर दिया गया है? नहीं, जैसा नैसर्गिक है वैसा गाय खाती है। और हम लोग खाने में कितना मिलावट करते हैं, मनुष्य समाज में अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि खाने में हमें स्वच्छ रहना चाहिए, खाने में स्वच्छता बरतना चाहिए। भले खाने में आपको दाल रोटी ही मिले, लेकिन सही रूप में है तो ठीक है। और आपको 56 प्रकार के व्यंजन खाने को मिल रहे हैं, उसको स्वस्थ के हिसाब से नहीं बनाया जाता, स्वास्थ्य के दृष्टि से नहीं बनाया जाता है, स्वाद के दृष्टि से बनाया जाता है। जैसे पानी हम लोग पीते हैं, बिस्लेरी पानी पीते हैं, ऐसा समय का भी मांग है। अब आप यात्रा में जा रहे हैं तो आपको बिस्लेरी पानी ही पीना पड़ता है, अब वहां वही पीना है। तो बिस्लेरी पानी को जो बोतल में बंद आता है, उसको अनेक केमिकल से उसको सुरक्षित रखने के लिए कि इतना समय तक वो खराब न हो, उसमें अनेक प्रकार के केमिकल डाले जाते हैं, कीटनाशक दवाई डाली जाती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। उसी तरह अनेक प्रकार के जो आप मिठाई खाते हैं जो बॉक्स में बंद आता है, जैसे बंगाल में आप ट्रेन में भी रसगुल्ला मिलता है, पैक रसगुल्ला, उसमें भी केमिकल का प्रयोग होता है कि वो पैकिंग जो है एक महीने तक खराब न हो। या जो पैकिंग में जो तेल आता है, तेल डिब्बे में पैक आता है, वो 6 महीने तक, 1 साल तक भी रहता है, 1 साल तक भी चलता है ना तेल, तो उसमें बहुत सारे कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होता है और बहुत सारे और भी केमिकल डाले जाते हैं, वो स्वच्छ के दृष्टि से, स्वास्थ्य के दृष्टि से हानिकारक है। लेकिन आपको खाना ही पड़ता है। गांव में आप तेल निकालकर 15 दिन महीने दिन यूज करते हैं, जो गांव में मिल होता है लोग तेल मशीन में पेर करके ले आते हैं और 1 महीने ज्यादा ज्यादा 2 महीने में यूज कर लेते हैं लोग। और शहरों में ऐसी सुविधा भी नहीं है, आपके घर में इतने मंदिर के लिए उतना व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं, कर भी सकते हैं अगर चाहे आदमी तो कर भी सकता है, मशीन में तेल पेरा कर ला सकता है, वो शुद्ध है, स्वास्थ्य के दृष्टि से भी अच्छा है। ये प्रभुपाद जी बहुत पहले ही बता चुके हैं कि खाने में, भोजन में हम लोग क्या खाते हैं। अधिकांश भोजन में हम लोग वो वस्तु खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है, वो खाने में मालूम नहीं पड़ता है। इस तरह हम लोग जो वस्त्र पहनते हैं वो भी अनेक प्रकार के रासायनिक तत्वों से उसको अच्छा बनाया जाता है, उसको उसका धुलाई किया जाता है, उसमें लाइट आने के लिए, चमक आने के अनेक केमिकल दिए जाते हैं। जैसे वस्त्र जो मिल से आते हैं उसको आप डायरेक्ट पहन लीजिए तो कि स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है किसी किसी को, कि वस्त्र भी उसमें भी अनेक प्रकार के हानिकारक लेप किए जाते हैं। प्रभुपाद जी पहले ही अपने अनुभव से बता चुके हैं कि खाने में, वस्त्र पहनने में और मन में स्वच्छता होना चाहिए। मन में कैसे, किस तरह से गंदगी प्रवेश करती है, तो असत साहित्य से, असत दृश्य से। आजकल अनेक प्रकार के मूवी हैं, स्लाइड शो हैं, फिल्म हैं जो दिखाए जाते हैं जगह जगह, जिसमें मन में सटल रूप से गंदगी आ जाती है। मन में कैसे गंदगी आती है, सूक्ष्म रूप से, मन भी सूक्ष्म है और उसमें जो गंदगी प्रवेश करने वाले वो भी सूक्ष्म है। जैसे बड़े बड़े हानिकारक रोग होते हैं उसके जो वायरस होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। तो मन के अंदर, बुद्धि के अंदर जो वायरस आते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, वो वायरस संक्रमित हो जाएंगे मन में लेकिन मालूम नहीं पड़ता है देखने से, सुनने से और उसका आवृत्ति करने से। जैसे वैष्णव जन बार बार तिलक की आवृत्ति करते हैं ललाट पर, तो तिलक का चिन्ह हो जाता है, हो जाता है। तिलक न भी लगाइए तो तिलक की आवृत्ति वहां हो जाती है। वैष्णव जन तिलक की आवृत्ति करते हैं तो तिलक का निशान हो जाता है। अब भगवान बार बार अवतार की आवृत्ति करते हैं भगवान बार बार अवतार लेने की आवृत्ति करते हैं, बार बार अवतार लेते हैं भगवान, तो उनको भी अवतार लेने की आवृत्ति हो जाती है। भगवान के नाना अवतार हैं, नाना अवतार मकरोद भुवने सुकिंतु, भगवान विविध अवतार लेते रहते हैं। आज भी कहीं मान लीजिए किसी लोक में जन्माष्टमी होगा, किसी ब्रह्मांड में रामनवमी उत्सव होगा, भगवान रोज अवतार लेते हैं। अनंत ब्रह्मांड है तो भगवान के अनंत अवतार भी हैं। कहीं भगवान बाल लीला करते हैं, कहीं पौगंड लीला, कहीं कैशोर लीला, भगवान अवतार की आवृत्ति धारण करते हैं। जैसे वैष्णव जन तिलक की आवृत्ति धारण करते हैं, उसी तरह मन जो है असत कार्यों की आवृत्ति करता है। मन हमेशा कुपथ की ओर भागता है। मन को बिना घोड़े का लगाम कहा गया है। ऐसे यहां मन को गीता में रूपक में बताया कि ये शरीर रथ है और इंद्रियां घोड़े हैं। जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं वो पांच घोड़े हैं और मन लगाम है और बुद्धि सारथी है और जीवात्मा जो है इस शरीर रूपी रथ में यात्रा कर रहा है। ये शरीर रथ है, पांच इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है। घोड़े को कौन नियंत्रित करता है? घोड़े को लगाम जो है नियंत्रित करता है। मान लीजिए आप घोड़े पर सवारी किए हैं और लगाम नहीं लगाए हैं, आप चल पाएंगे? जब घोड़ा रेस में होगा तब कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? लगाम के द्वारा नियंत्रण होता है। लगाम नहीं है तो आपको कभी भी घोड़ा गिरा सकता है। उसी तरह इंद्रियों पर लगाम जो है, इंद्रियों को बिना लगाम के रखेंगे तो इंद्रियां जीव फैले विषय सागर है, विषय सागर में इंद्रियां गिरा देती हैं। तार मध्य जीवायति लोभमय सुदूरमति ताके जेता कठिन संसारे। जिह्वा को जितना बड़ा कठिन है, अगर कोई जिह्वा को अपने वश में कर लेता है तो सब इंद्रियों को वश में कर सकता है। जिह्वा को जितना बड़ा कठिन है ताके जेता कठिन संसार, इस संसार में जिह्वा को जितना बड़ा कठिन है। जिह्वा में है क्या? हड्डी भी नहीं है, बहुत लचीली भी है और अपने सुरक्षित जगह में रहती है। नाक है, आंख है, कान तो बाहर है लेकिन जिह्वा अपने को बहुत 32 गेट के अंदर है सुरक्षित है। एक कवि ने लिखा है कि जो जिह्वा को अनियंत्रित छोड़ देता है तो बहुत दुखी हो जाता है। कहा कि रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सरग पताल और आप कह भीतर गई आ जूती खाए कपाल। जिह्वा इतनी बावरी है कि वो सरग पताल एक कर देती है और अपने कह करके अंदर भाग जाती है और जूता जो है आप कह भीतर गई जूती खाए कपाल और शीर को जूता खाना पड़ता है तो जिह्वा को जो बस में कर लेता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं जिह्वा को बस में करने से जिह्वा के समानांतर उदर हैं और जननेन्द्रिय है, तीन समानांतर हैं। बुद्धि पहले है, बुद्धि श्रेष्ठ है, फिर जिह्वा है, फिर पेट है, उदर है, फिर जननेन्द्रिय है। तो जिह्वा को बस में करने से सारी समस्याएं सुलभ हो जाती हैं। इसलिए जिह्वा का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। प्रभुपाद लिखे जिह्वा का दो महत्वपूर्ण कार्य है, एक बोलना और खाना। और भक्ति का शुभारंभ जो है जिह्वा से होता है, सेवन मुखे ही जिह्वा दो। एक बार राधागुण महाराज बोल, एक आदमी कहा कि महाराज भक्ति जब हम करते हैं, यहीं पर एक भक्त प्रश्न पूछा था, तो मन हमारा कहीं और भाग जाता है तो क्या करना चाहिए? तो महाराज कहे कि मन को तो कहा भी नहीं गया कि मन को बस में करो, मन को लगाओ, जिह्वा को लगाने के लिए कहा गया है। महाराज कहे कि भगवान कहीं नहीं कहे कि मन को लगाओ, जिह्वा को लगाना है। जिह्वा से भक्ति का शुभारंभ होता है, सेवन मुखे ही जिह्वा दो, नाम को जिह्वा से सेवन करना है और मन को छोड़ दो, केवल जिह्वा को नाम में लगाओ। और जिह्वा को लगाने से फिर मन अपने आप जो है धीरे धीरे होता है। प्रभुपाद जी अंत में लिखते हैं, अच्छी बात नहीं है कि लोग अनेक प्रकार के फैशन में लगे रहते हैं और अपना बहुमूल्य समय जो है फैशन बदलने में बिता देते हैं। आजकल जैसे वोमेन ब्यूटी पार्लर है, अब मेंस ब्यूटी पार्लर भी चल गया है। पहले स्त्रियों के लिए ब्यूटी पार्लर होते थे, लेकिन अब मनुष्य भी ब्यूटी पार्लर में जाने लगे। अब बल्कि एक व्यक्ति बस में यात्रा कर रहा था, तो बस में गया तो प्रायः लेडीज के लिए रिजर्व सीट होता है, सीनियर सिटीजन्स के लिए रिजर्व सीट होता है। तो एक लड़की बैठी थी, लड़का बैठा था, लेकिन वो लड़की थी लेकिन लड़के जैसा पहचान में लगती थी। तो एक व्यक्ति आया तो कहा कि थोड़ा घुस को, भोजपुरी में घुसकना बोलते हैं, थोड़ा घुस किए माने थोड़ा आगे बढ़िए। तो आदमी ने उसको पुलिंग माने पुरुष के रूप में संबोधित किया, लेकिन वो लड़की लड़के के रूप में थी, बाल कटा करके। लड़कियां बाल कटा लेती हैं और पैंट शर्ट पहन लेती हैं, तो मालूम नहीं पड़ता कि ये लड़की है कि लड़का है। एक बार पटना से फुटबॉल प्ले करने वाली एक टीम आई थी, लड़कियों की टीम आई थी, तो यहां मैच था, फुटबॉल मैच लड़कियों का था। तो उसमें एक लड़की थी, वो लड़के जैसा। तो हम पूछे आपका क्या नाम है, तो बाद में जो उनों के जो गाइड थे वो बोले कि ये लड़की नहीं, ये लड़का नहीं, ये लड़की है। तो मैं भ्रम में हो गया कि नहीं, ये तो लड़का जैसा लगता। तो कभी कभी व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि लड़की है कि लड़का है, कि लड़का ही लड़की है कि लड़की लड़का है। कभी कभी लड़के भी लड़की जैसा डिजाइन, आजकल लड़के लड़की जैसा बाल रखते हैं और लड़कियां लड़कों जैसा बाल कटिंग कर लेती हैं और पैंट शर्ट पहन लेती हैं, तो मालूम नहीं पड़ता है। तो उसने जब कहा कि तो वो जैसे शेर जैसे गरजता है, वैसे गरजा, वो कहा कि आपको मालूम नहीं पड़ता है कि मैं लड़की हूं या लड़का हूं। तो ऐसे फैशन बदलने में लोग अपने असली रूप को बदलना चाहते हैं। जैसे बहुरूपिया जो है गांव में आता है, बहुरूपिया जब भेष बदलता है, कभी कभी पुलिस इंस्पेक्टर का भेष बना लेता है और गांव में किसी को अरेस्ट कर लेता है। हमारे गांव में एक बहुरूपिया आया था, तो पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में आया, तो एक व्यक्ति को पकड़ कर अरेस्ट करके ले जाने लगा। तो गांव वाले सभी कहे कि भाई ये क्या गलती किया है, और तो पुलिस आकर उसको पकड़ कर ले जा रही है, पुलिस इंस्पेक्टर आया है। तो सब गांव वाले इकट्ठा हो गए कि ये कैसे आप क्यों पकड़ कर ले जा रहे हैं, बहुत शरीफ आदमी है, तो कोई गलती किया नहीं, ये तो कभी गांव से बाहर जाता भी नहीं है, वो कभी कहीं जाते नहीं थे, यहां तक कि एक बार ट्रेन देखे कहीं बनारस से, एक बार किसी तरह कोई उनसे गाय बैल बंधे मर गई तो गो हत्या का पाप लगता है, तो लोग बनारस जाते हैं नहाने के लिए। आज भी हम लोगों के तरफ कोई बैल बंधे मर गए, मान लीजिए आप बैल को बांध दिए हैं रस्सी में और किसी तरह बंधे वो मर गया, तो बांधने वाले के ऊपर गो हत्या लगता है। तो उसको बनारस जाकर गंगा स्नान करके, मुंडन करके, भिक्षावृत्ति करके, कई दिनों तक खुद घर से बाहर भोजन बनाकर खाना पड़ता है। तो गो हत्या का पाप लग गया था तो बनारस गए, तो ट्रेन में तो कहे कि एक व्यक्ति से कि ये ट्रेन किसका है, तो व्यक्ति ने कहा कि ये सरकार का है। तो बोले सरकार बहुत धनी है, अतः बहुत धनी है। तो बोले पांडे जी से भी ज्यादा धनी है, हमारे गांव के बगल में पांडे जी हैं, फुलन पांडे, बहुत धनी, उनका 1000 एकड़ जमीन है। तो वो सोचते थे कि उनसे बड़ा कोई धनी नहीं हो सकता है। तो बोले बच्चा पांडे जी से भी अधिक धनी है सरकार। आ तो हाँ, अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा आदमी है वो, पांडे जी से मैं तो सोचता और कोई धनी नहीं होगा, वो सोचते थे। तो बोले ये ट्रेन क्या है? अरे देखिए ट्रेन आता है तो यही काट कर भाग जाता है, तो हाँ तो सुने थे कि ट्रेन आती है और काट कर भाग जाती है। तो बोले वो बच्चा ट्रेन आती है वो काट कर भाग जाती है, तो हाँ भाग जाती है। तो ट्रेन से लगभग वो 1 किलोमीटर दूर थे। बोले नहीं हम ट्रेन से नहीं जाएंगे, हम बस से जाएंगे, वो काट कर भाग जाती है सुने। तो उनको वास्तविकता मालूम नहीं था। तो जिन लोगों को प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भौतिक सकाम कर्मों के अलावा आध्यात्मिक लोग का ज्ञान नहीं है, केवल सोचते हैं कि हमारा जीवन केवल भौतिक जगत में ही रहना है, यही वास्तविक सुख है और यही हमारा नित्य शाश्वत जीवन है, तो वैसे लोग बार बार भौतिक जीवन में ही पड़े रहते हैं। कभी तल अतल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल में जाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो लोग पाताल लोक में चले जाते हैं, नारद मुनि ने कहा कि एक बिल या छेद है जिसमें प्रवेश करने के बाद कोई लौटता नहीं। हरयश्वी स्वरूपकार समझ गए, एक बार जो व्यक्ति पाताल नामक निम्नतर लोकों में प्रवेश करता है, पाताल लोक में, तो व्यक्ति पाताल लोक से वापस बड़े मुश्किल से आता है, बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन बहुत मुश्किल से। इसी तरह यदि कोई वैकुंठ धाम में प्रवेश करता है तो इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आता। यदि कोई ऐसा स्थान है जहां जाकर मनुष्य दुख में जीवन में नहीं लौटता है, तो फिर नश्वर भौतिक जगत में बंदरों की तरह क्यों उछल कूद करता है? बंदर को मालूम नहीं है, वो तो मदारी के रस्सी में बंधा रहता है, सोचता है कि मैं नाचूंगा तो हमें वो नट खाने को देगा। संसार में लोग भी सांसारिक सुखों के लिए बंदर की तरह नाचते हैं। तुलसीदास एक बहुत सुंदर चौपाई में लिखते हैं कि नाज विवश नर शकल गोसाई आ नाचई नट मरकट की नाई। नट के मरकट, जैसे नट होता है उसके बाद बंदर होता है, और बंदर के गले में और नाक में रस्सी लगा देता है और एक डंडा रखता है, उसको नचाता है। जब बंदर नहीं नाचता है तो मारता भी है। तो बंदर कभी कभी डिजाइन के अनुसार ड्रेस भी बदलता है, नृत्य जैसा नृत्य वैसा उसको ड्रेस भी पहनाया जाता है। कभी बंदर को कहा जाता है कि बंदर भालू का नाच जो होता है, तो कभी भालू को कहा जाता है कि बताओ सास और बहू का कैसे झगड़ा होता है, तो भालू वैसा एक्शन करता है। बहू कैसे आटा मलती है, तो भालू वैसा एक्शन करता है। बंदर को कहा जाता है, नट कहता है कि देखो बाप बेटे में कैसे झगड़ा होता है, तो बंदर वैसा एक्शन करता है। वो क्यों एक्शन करता है? कि जैसा नट कहता है, नट कहता है ऐसा एक्शन करो, अच्छा टोपी पहनकर थोड़ा राजकुमार हो जाओ, तो बंदर चश्मा पहन लेता। हम लोग देखे हैं बंदर का नृत्य। वो नट कहता है कि राजकुमार का कैसा ड्रेस होता है, तो बंदर कोट पहन लेता है, चश्मा पहन लेता है, टोपी पहन लेता है और शीशा में देखने लगता है। उसी तरह माया जो है ये संसार में लोगों को नृत्य कराती है, जैसे नृत्य कराती वैसे हम लोग नृत्य करते हैं। नाजी विवश नर शकल गोसाई नाचई नट मरकट की नाई। नारी क्या है? माया, जो महामाया जीवों को अनेक शरीरों में भ्रमाती है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे, ऐसे ही है ना। ઝાપટિયા ધરે. આ કૃષ્ણ ભૂલી સે જીવ અનાદિર બહિર્મુખ, અતેવ માયા તારે દેહ સંસાર, સંસાર આદિ દુઃખ. માયા સકામ કર્મો કે ચલતે જીવ કો દુઃખ દૈનિક અનેક વિવિધ શરીર દેતી હૈ, વિવિધ વસ્ત્ર બદલવાતી હૈ, કભી એ વસ્ત્ર મેં કભી વો વસ્ત્ર. વસ્ત્ર પરિવર્તન મને દેહ પરિવર્તન, આ દેહ પરિવર્તન મેં અનેક કષ્ટ હોતે હૈ કે દેહ પરિવર્તન કા અંત કબ હોગા, જબ કોઈ ઈ સંસાર સે પરે જો આધ્યાત્મિક જગત હૈ ભગવાન કે વિષય મેં કોઈ જાનને કા પ્રયાસ કરતા હૈ, યા વહાં જાને કા પ્રયાસ કરતા હૈ, ભગવાન કે ધામ મેં જાને કે લિયે કોઈ પ્રયાસ કરતા હૈ, ઓર જાન જાતા કે ઇસસે પરે ભી એક લોક હૈ જહાં ભૌતિક જગત કા દુઃખ નહીં હૈ, એ દુઃખમય જગત નહીં હૈ વહાં, ઓર વહાં જાને કે બાદ જીવ કભી આને કી ઈચ્છા નહીં કરતા હૈ, વહાં આને કા રસ્તા હી નહીં હૈ, બ્લોક હૈ. કોઈ કહી શકતા કે ફિર ભી કભી કભી લોગ આતે હોંગે, ઇમરજન્સી ગેટ હોગા શાયદ, વન વે હૈ, લેકિન જૈસે વિમાન મેં ઇમરજન્સી ગેટ હોતા હૈ, કભી પ્લેન દુર્ઘટના હોને વાલી હો તો ઇમરજન્સી ગેટ ખુલતા હૈ, તો ગેટ બંધ રહેતા હૈ. કભી કભી ભગવાન કે ધામ સે ભી લોગ આતે હૈ તો વિશેષ પરિસ્થિતિ મેં ગેટ હોતા હૈ. જૈસા કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા મેં કહા ગયા, યદ ગત્વા ન નિવર્તંતે તદ ધામ પરમ મમ. એક એસા ક્ષેત્ર હૈ જહાં જાકર કોઈ ઇસ ભૌતિક જગત મેં વાપસ નહીં આતા. ઇસ ક્ષેત્ર કા બારંબાર વર્ણન હુઆ હૈ ભગવદ્ ગીતા કે 4:9 મેં. કૃષ્ણ કહેતે હૈ, જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ એવેતિ તત્વત ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ અર્જુન. તો નારદજી બહુ સુંદર પહેલી કે માધ્યમ સે પહેલી બુઝા કરકે બતા રહે હૈ. ગાંવ મેં આજ ભી દાદી સે યા માં સે લોગ પહેલી સુનતે હૈ કે માં એક પહેલી સુનાઓ, માં પહેલી બુઝાતી હૈ. અનેક પહેલીયા જો આધ્યાત્મિક અધ્યાત્મ સે ભી જુડી હૈ, આ કુછ બડે જ્ઞાન પરક ભી પહેલી હોતી હૈ. જૈસે બચપન મેં પ્રાય સબ લોગ પહેલી બુઝાતે થે. પહેલી કે કઈ અર્થ હોતે હૈ, ભૌતિક ભી આધ્યાત્મિક ભી. જૈસે એક પેડ હૈ જિસમે પત્તા નહીં હોતે હૈ, યા એક પેડ હૈ કેવલ ફૂલ ફૂલતા હૈ, એક પેડ હૈ જો ફૂલ ભી હોતા હૈ ઓર ફલ ભી હોતા હૈ, ઓર એક પેડ હૈ જિસમે કેવલ ફલ હોતા હૈ, ફૂલ હોતા હી નહીં. તીન પ્રકાર કે લોગ ભી હોતે હૈ, એક હોતે હૈ જો કેવલ બોલતે હૈ કરતે નહીં હૈ, ઓર એક લોગ બોલતે ભી હૈ ઓર કરતે ભી હૈ, ઓર એક પ્રકાર કે લોગ હોતે હૈ કેવલ કરતે હૈ બોલતે નહીં હૈ, વો કરતે હૈ લેકિન બોલતે નહીં, ઓર એક પ્રકાર કે લોગ કેવલ બોલતે હૈ કે હા એક દે દેંગે આપકો યે કર દેંગે, કેવલ બોલતે હૈ લેકિન કરતે નહીં હૈ. તો વો પેડ જો કેવલ ફૂલતા હૈ ફલ નહીં દેતા હૈ, ઓર એક પેડ જો ફૂલ ભી દેતા હૈ, જૈસે આમ મેં ફૂલ ભી હોતા હૈ ફલ ભી હોતા હૈ, ઓર એક એક હોતા હૈ કેવલ ફૂલ દેતા હૈ. કટહલ મેં કેવલ ફલ હોતા હૈ, કટહલ મેં ફૂલ નહીં હોતા હૈ ના, કેવલ ફલ હોતા હૈ, ઓર એક હોતા હૈ જિસમે ફૂલ ગુલડ હોતા હૈ, ફૂલ નહીં હોતા હૈ કેવલ ફલ હોતા હૈ. નહીં તો ઇસ પહેલી કે માધ્યમ સે મનુષ્ય કો એસે શુદ્ર કાર્યો સે મેં સમય નહીં ગવાના ચાહીએ, સદૈવ કૃષ્ણ ભાવનામૃતિ મેં સ્થિર રહેકર કાર્ય કરના ચાહીએ, ઓર હંમેશા દૃઢ સંકલ્પ કે સાથ ભક્તિ રૂપ ઔષધિ કા સેવન કરના ચાહીએ. ભક્તિ રૂપ ઔષધિ, ભવ ઔષધિ, એને છે ઔષધિ માયા નાસી બારે લાગી. ઓર કે હરી નામ મહામંત્ર લવ તુમી માંગી, એ ઔષધિ કા સેવન કરના ચાહીએ, જો ભવ ઔષધિ હૈ. નામામૃત ક્યા હૈ, ભવ કી ઔષધિ હૈ, એને છે ઔષધિ માયા નાસી બારે લાગી. ઓર હરી નામ મહામંત્ર લવ તુમી માંગી, અગર જિસકો મહામંત્ર મેં લવ હો જાય, પ્રેમ હો જાય, રસના हरि नाम तव लागी। रसना को अगर जैसे हम लोग रसना पीते हैं, अगर इस रसना में भगवान के नामामृत पीने का अगर आदत लग जाए तो जीव का जो भव रोग है समाप्त हो जाएगा। भव रोग की असली दवाई क्या है? नामामृत, नाम रूपी अमृत का पान करने से भव रोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि का अंत हो जाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये भव रोग की औषधि है, और चैतन्य महाप्रभु भव रोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि का औषधि लेकर बड़े वैद्य के रूप में है, सबसे बड़े वैद्य हैं कि भव रोग का इलाज करने आए हैं। और ये इस दवाई को जो अपना लेता है वो भव रोग से मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम में स्थिर हो जाता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, ताई गौर हरि प्रेमानंदे।